ओह शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन,
प्रथम एक बात आप देखें, जब आप सुबह दरवाजा खोलते हैं तो प्रकाश को बनाते नहीं, बल्कि दरवाजा खुलने से प्रकाश उतरता है। जो सत्य है उसे आप बना नहीं रहे हैं, उसे उतार रहे हैं। और उसकी तैयारी हमें करनी है। आप मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते, आप पाठ करते हैं कि नहीं करते, ये व्यवस्था परमेश्वर की नहीं है, बल्कि हमारी है, संतों की है, ब्राह्मणों की है, आपकी है। हम बताते हैं कि भाई इस व्यवस्था से हमारे अंदर का जो जानवर है उसका रूपांतर होगा। वेद और विज्ञान में एक बात निश्चित रूप से आई है, जो है उसका आप विनाश नहीं कर सकते, केवल रूपांतर कर सकते हैं। अक्सर मेरे सामने जो प्रश्न उठता है, कोई कहता है मेरे मन में क्रोध है, कोई कहता है कि ऐसा है वैसा है, तो सारी वृत्तियां जो हैं ये पशुओं की हैं, और हमारे और आपके अंदर जन्म से पशु की वृत्ति लेकर आए हैं। एक बार एक आदमी मेरे से पूछा, स्वामी जी कौन सा अच्छा कर्म है, हम क्या करें कि हमारा कर्म अच्छा माना जाए, वृत्ति से प्रवृत्ति है, वृत्ति विचार। आपका विचार अगर अच्छा है तो अच्छे विचार से ही आप किसी को प्रणाम करेंगे, किसी को भोजन कराएंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे। हाथ वही है, लेकिन अगर विचार गलत हुआ तो जो हाथ रोटी खिला रहा है वो छीन भी सकता है, जो हाथ आशीर्वाद दे रहा है विचार बदलने से थप्पड़ भी आप मार सकते हैं। जिसकी वृत्ति अच्छी है, जिसका विचार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, जिसका पर्यावरण ठीक है, वो जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। और विचार हमारे आपके अंदर पशुओं वाला ज्यादा है। जरा आप छोटी सी बात देखें, हमने देखा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे आपके अंदर जो एनिमल पैशन है, जो पशुता की वृत्ति है, हमने ट्रेन में भी देखा है, रास्ते चलते भी देखा है, पड़ोस में भी देखा है, भ्रमण काल में भी देखा है, सब जगह देखा है। उसका दो उदाहरण दे दूं कि मनुष्य में कितनी पशुता भरी है और उसका रूपांतर कैसे किया जाए। फिर से समझ लें, ध्यान रूपांतर की अंतिम प्रक्रिया है। यम की जो बात करें, नियम की बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ध्यान के बाद जो है तुरीयावस्था है। सारी शक्तियां आप में मौजूद हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर प्रविष्ट है, लेकिन हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। अब वही विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी सरल विधि है। आपसे बताया कि ध्यान के हजार से ऊपर प्रक्रिया है, लेकिन जो सबसे सरल विधि है एक सद्गृहस्थ के लिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, वही प्रक्रिया आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, इस प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे तो जो लक्ष्य है उसकी अनुभूति होगी और प्राप्ति होगी। पहले आपको बताया कि हम अपनी दो पशुता की बात करना है तो बहुत, लेकिन दो खास पशुता की बात करना चाहते हैं। आप थोड़ा, बड़े प्यार से कहता हूं, आप थोड़ा झूठ बोल दें तो ध्यान में बाधा नहीं आएगी, थोड़े लालची भी हैं तो भी ध्यान में बाधा नहीं आएगी, लेकिन आपकी ध्यान की विधि में दो चीजों को जबरदस्त रूपांतरित करना पड़ेगा। पहली चीज है किसी से राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। इसका थोड़ा स्वरूप बता दूं, राग द्वेष पशुओं का गुण है। एक राग और द्वेष, और दूसरी बात फिर बताता हूं। पहला इसका पूरा स्वरूप बता दूं, गाय बाछड़ा देती है और प्रथम 3 महीने देखिए कितना प्यार अपने बच्चे को करती है। भैंस भी 3 महीने तक अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। कुतरी भी अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। तो प्यार जो है ये शाश्वत है और माँ का स्वभाव है। जा विचार तो कीजिए, कुतरी भी प्रथम बार, गाय भी प्रथम बार, भैंस भी प्रथम बार, शेरनी की सब की बात कर रहा हूं, इसी में सब उदाहरण आ जाते हैं। ये पशु भी, इनको प्रशिक्षण कहां से मिला? मां की कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं है, मां बस मां होती है। अब पशुओं में देखिए कि मां अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, लेकिन 3 महीने के बाद वही अपने बच्चों से सामने चारा रखिए तो बच्चे से छीन के खा लेती है, वो 3 महीने भूल जाती है। हम आप भी अगर प्यार को भूल गए तो पशु से भी गए गुजरे हो गए। जहां जिस बच्चे के लिए इतना प्यार था, आज वहां पर द्वेष आ गया, राग आ गया। मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, और जिसके अंदर राग द्वेष है वो प्रेम का नाटक करता है। जहां प्रेम होगा वहां कभी अभाव नजर नहीं आएगा। हमने खुद यहां जंगल में रहता हूं, वानरी को भी देखा है, कागली को भी देखा है, एक कुतरी को देखा है। शुरू शुरू में हमने खुद देखा है कि मैं रोटी फेंकता हूं, लेकिन कुतरी के बच्चे जब खाते हैं तो मैंने देखा वो बैठ करके या खड़े होकर देखती है, खाती नहीं। जब वो बच जाता है तब खाती है, नहीं जब तक बच्चे खाते हैं वो खाती नहीं। जा विचार कीजिए, गाय का देखा है कि हम दूध निकाल लेते हैं फिर वो थोड़ा चढ़ा लेती है, बच्चा जब पीने आता है तो फिर आखिर ट्रेनिंग उसको कहाँ से मिली भाई, बच्चे के लिए थोड़ा दूध चुराओ। एक बात कह रहा हूँ, कागले को इतना दुष्ट माना गया फिर भी देखा है गांव में से रोटी लाता है और टुकड़े टुकड़े करके खिलाता है, वो देखा है मैंने जंगलों। अब ये देखिए, इतना प्यार तो पशु पंछी में भी है और हमें भी है, प्यार के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन वही उसी गाय को देखा, उसी कुतरी को देखा, उसी कागली को देखा, कागले को देखा, कुछ समय के बाद वो अपने बच्चों से ही छीन लेते हैं, राग द्वेष आ गया। अब जा विचार कीजिए, जन्म से हमारे आपके अंदर भगवान ने दैवी संपत्ति दी, गीता में इसी को प्रेम को करुणा को दया को दैवी संपत्ति माना गया। आपने मुझे चाकू दिया कि गुरुजी जब फल आए तो इसका उपयोग करके फल खा लेना, कोई कठिन फल आए, कोई ऐसा फल आए, ये आए। आपका उद्देश्य मेरे लिए बहुत अच्छा था कि स्वामी जी के पास कोई कठिन फल आए तो चाकू का उपयोग करके फल को खा लें, तो आपके पीछे जो भावना थी बड़ी शुद्ध थी, आपके मन में मेरे लिए प्यार था तभी आपने दिया। वही चाकू क्रोध में आकर अगर मैं कुछ गलत उपयोग कर बैठूं तो देने वाला क्या करेगा। हमारे आपके पास जन्म से दैवी संपत्ति है, हमारी संतान कहीं भी जन्म ले, मतलब मनुष्य की देश में कि विदेश में, ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, वैश्य में, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में, पारसी में, समष्टि में कह रहा हूँ, हमारी संतान कहीं भी जन्म ले, कोई भी बच्चा जन्म से झूठ नहीं बोलता, सभी बच्चे सत्य बोलते हैं लेकिन हम उसे झूठ सिखाते हैं। बाकी यही दैवी संपत्ति है, कि दैवी संपत्ति मतलब जिसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई, आप जन्म से लेकर आए। हर बच्चा सत्य बोलता है, किसी बच्चे के मन में नफरत नहीं है, किसी के बच्चे के मन में राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे उसको जो कोरा कागज है उस पर टेढ़ा मेढ़ा चित्र बना के बच्चों के विचार को बदल देते। अब यही देखिए कि दैवी संपत्ति हम सब के पास है, सब सत्य बोलते हैं, सभी प्रेम के पक्ष में। अरे पशु तक है, कितना प्रेम करता है, जहां प्रेम है, लेकिन वो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। दैवी संपत्ति हम जन्म से लेकर आए। अब जा विचार करो मेरे प्रिय आत्मन, योग का क्या अर्थ है, चाहे कर्म योग कहो, भक्ति योग कहो, ज्ञान योग कहो, ध्यान योग कहो, योग का क्या अर्थ है। पुनः अपनी अवस्था की प्राप्ति करना, पुनः अपने आप से जुड़ना, उसी अपने आप को किसी ने सत्य कहा, किसी ने प्रेम कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने अस्तित्व कहा, किसी ने पैगंबर कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने जीसस क्राइस्ट का। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके अनेक नाम हैं, आप अगर किसी के पिता हैं तो किसी के पुत्र भी हैं, आप अगर किसी के भाई हैं तो किसी के चाचा भी हैं, मामा भी हैं, भांजे भी हैं, सारी बात है। अब देखना यह है कि हमारा आपके साथ क्या रिश्ता है। यहां पर एक बड़ी बात आती है। चलो आप मेरे व्यवहारिक मानसिक ढंग से पुत्र हैं, आप मेरे मानस पुत्र हैं। अब सुबह मैं कहूं मेरे पुत्र आओ, दोपहर में कहूं कि पिताजी आओ, शाम को कहूं कि मामा जी आओ, तो लोग मुझे पागल बोलेंगे। स्वामी जी कभी पुत्र बोलते हैं, कभी पिताजी बोलते हैं, कभी मामा बोलते हैं। आप मेरे लिए 24 घंटे पुत्र हैं, किसी के लिए 24 घंटे मामा हैं हमेशा के लिए, किसी के लिए पिता हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र हैं तो किसी के पति भी हैं, किसी के पिता भी हैं। आपका रिलेशन मेरे साथ क्या है वो टोटल होना चाहिए। अगर शिष्य हैं, मानस पुत्र हैं तो पुत्र हैं। अब कोई कहे स्वामी जी ये तो हमारे पिता हैं, ये पुत्र कैसे हो सकते हैं? नहीं, आपका रिश्ता आपका रिश्ता संबंध पिता का है तो टोटल पिता है। वो आपका पिता मेरा पुत्र भी हो सकता है, टोटल पुत्र 24 घंटे। जो आपका पिता है वो मेरा मानस पुत्र है तो किसी का मामा भी है, किसी का भांजा भी है। अब बताइए, अब यही थोड़ा समझना है और जानना है। ध्यान में परेशानी क्या हो रही है? लोग कहते हैं स्वामी जी दो माला राम की घुमाता हूँ, दो शंकर की घुमाता हूँ, दो हनुमान की घुमाता हूँ, अब भगवान भी जो है बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसको हनुमान जी की तरह रिश्ता रखूँ, सीता की तरह रखूँ, भरत की तरह रखूँ कि लक्ष्मण की तरह रखूँ, भगवान की समझ में ही नहीं आता। अब यही है, आदर सबका करना है, चाहे मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारा है कि कोई, आदर सबका करना है, लेकिन जो रिश्ता बांधे हो उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप उसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, गुरु के रूप में, किस रूप में, किस रूप में आपने रिश्ता बांधा, अब ये जा विचार करना। आप आदर सबका करना है लेकिन रिश्ता जो आपका है वो टोटल होना चाहिए। हनुमान तो बस हनुमान, हनुमान की तरह राम की, लक्ष्मण तो लक्ष्मण, सीता तो सीता, भरत तो भरत। आज तो उदाहरण दे रहा हूं। गड़बड़ी ये हो रही है कि हम ठीक से समझ नहीं पाए और कई नामों का उच्चारण होता रहा। सत्य वही है, सत्य दो ना, आप हैं, आपका अस्तित्व एक है, आप दो नहीं है। कोई पिता बोला, जिस समय मैं पुत्र बोल रहा हूं उसे कोई पिता बोल रहा, क्या फर्क पड़ा? जिस समय कोई भाई बोल रहा है उसे कोई मामा भी बोल रहा है आपको। जिस समय आपको कोई माँ बोल रहा है उस समय मैं बेटी बोल रहा हूं, जिस समय आपको कोई मामी बोल रहा है तो कोई भतीजी बोल रहा है, क्या फर्क पड़ा? आप तो वही के वही हैं। अब इसी तरह से जो अस्तित्व है वो अस्तित्व आप स्वयं हैं, उस अस्तित्व को किस रूप में आप प्रकट करना चाहते हैं? राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, गुरु के रूप में, किस रूप में? अब हमारे और अस्तित्व के बीच में, उस अस्तित्व को प्रकट करने के लिए एक विचार, एक पत्थर है, शिल्पकार वही है। मैंने कहा इस पत्थर में से पत्थर वही है, उसके पास 50 पत्थर पड़े संगमरमर के या जो भी हो। हमने कहा इसमें से राम बनाओ, आपने कहा इसमें से कृष्ण बनाओ, किसी ने कहा इसमें शंकर बनाओ। अस्तित्व पत्थर है, इसी अस्तित्व की अब जानकारी जब वैज्ञानिकों को हुई तो बड़ी सुंदर बात कह दी है। आप पत्थर नहीं बना सकते, अर्थात अस्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन अस्तित्व को किस रूप में रूपांतरित करना है वो आप कर सकते हैं। आप पत्थर नहीं बना सकते, लेकिन पत्थर में से राम कृष्ण और शंकर की मूर्ति बना सकते। अब यही जा देखना है कि विज्ञान भी अब हमें समझने लगा कि जो अस्तित्व है वो है, उसका कुछ भी बताना, आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन उस अस्तित्व को किस रूप में प्रकट करना चाहते हो आपकी बात है। गेहूं है आपके पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन वो गेहूं को आप रोटी के रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं कि पूड़ी के रूप में, पूड़ी छोटी बनाना चाहते हैं कि बड़ी रोटी। गेहूं है, लेकिन गेहूं को किस रूप में रूपांतरित करना है वो गेहूं का संकल्प नहीं है, वो आपका है। ये अस्तित्व जो हमें आपको प्राप्त है, इसका रूपांतर आप किस रूप में करना चाहते हैं? अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। ये पानी है, पानी है, आप रसोई में ले जाना चाहते हैं, खेत में ले जाना चाहते हैं, ग्लास में रखना चाहते हैं, लोटे में कि डोल में, किस में रखना चाहते हो, तैयार है, क्योंकि उसका अपना कोई संकल्प नहीं है। आपका ग्लास लाल है तो लाल दिखाई पड़ेगा, आपका ग्लास पीला है तो पीला है। वो हरा पीला लाल नहीं है, जिस रूप में देखना चाहे आप देखिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो पशुता है, जो पशुओं वाला विचार है, वो हमें रूपांतरित नहीं होने दे रहा है। हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन देखें, महावीर का देखें, जीसस क्राइस्ट का देखें, कबीर का देखें, तुलसीदास का देखें, सूरदास का देखें, जिसका भी देखें, इसी पशुता को रूपांतरित करने के लिए इनके जीवन को देखें। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है, कोई आदमी अपमान किया, भगवान बुद्ध हंसते रहे, वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने इतना अपमान किया और भगवान बुद्ध में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ी जो हल्की हो। भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैंने आपका अपमान किया, आप इससे प्रभावित क्यों नहीं हुए? अब भगवान बुद्ध का जा अपने ऊपर ख्याल कीजिए, लीजिए विचार कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। वो आदमी घबरा गया, कहे आप तो हैं। कहते मेरे अंदर पशुता का जन्म नहीं हुआ, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया। अब यही कि तुम्हारी पशुता जागी, और पशुता के जागरण से जिसमें राम बनना था उसमें तूने शेर बना दिया, घोड़ा बना दिया, गधा बना दिया, मच्छर बना दिया। अस्तित्व वही है, लेकिन तेरा विचार तेरे को गधा बना दिया। मैं गधा बनना नहीं चाहता, मेरा जो अस्तित्व है उसी में रहना चाहता हूं। अब देखिए इसी बात को थोड़ा सा और आप विचार कीजिए। पहले तो बात एक व्यवहारिक करूं, दुख का कारण क्या है? चलो यहां अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सभी एक दूसरे को जानते हो, मैं क्या कहूँ, खूब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हर तरह से सुखी लोग बैठे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट वाले बैठे हैं, लेकिन एक बात करता हूं, हम आप सो गए, अच्छी तरह नींद आई, तो दुखी कौन है? क्योंकि हम अस्तित्व में गए, लेकिन ये कुदरती प्रक्रिया है नींद। अर्थात जब हम कुदरती प्रक्रिया नींद से अलग होंगे, जागेंगे, फिर याद आएगा कि किसको 10 लाख देना है, किससे 10 लाख लेना है। आप 1 करोड़ के फ्लैट में सोए, मैं झोपड़ी में सोया, 1 करोड़ फ्लैट आप भूल गए, झोपड़ी मैं भूल गया। सुबह उठे तो आपको याद आया कि इसमें कलर कराना है, मुझे याद आया कि पत्थर लगाना है, दोनों दुखी हो गए। आपको कलर नहीं मिल रहा है 1 लाख का, मुझे 10 रुपए का पत्थर नहीं मिल रहा है, बाकी नींद में कहां दुखी थे। अब ये देखिए प्रक्रिया, उदरती प्रक्रिया में कहीं कोई दुख नहीं, मतलब नींद, कुदरती प्रक्रिया में कोई दुख नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, अर्थात अपने अस्तित्व से जब अलग हुए तब दुखी हो गए। साधना के द्वारा, जो ध्यान की बात कर रहा हूं, साधना के द्वारा उसी अस्तित्व में जब आप अपने आप को स्थापित करते हैं तो कुदरती प्रक्रिया में जैसे हम सब सुखी हैं, ऐसे साधना के द्वारा जब अपने अस्तित्व में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं तो वहां आनंद सुख के अलावा और कुछ है ही नहीं, उसे अलग हो गए। अलग कौन कर रहा है? विचार। और विचार क्या है? पहला तो हम काया, किसी ने कहा मनीषानंद तुम मूर्ख हो, बस मैं दुखी हो गया। किसी ने कहा मनीषानंद दूसरे महात्मा के पास बहुत सिद्धि है, बहुत दुखी हो गए। आप दूसरों पे जी रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचान रहे। तो यही प्रियात्मन सबसे पहले कहूंगा कि हमारे जीवन में जो किसी तरह से दूसरों पर नजर है, इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा, बड़े प्यार से दूंगा। जो चरता है वो पशु है और जो विचारता है वो मनुष्य है। चरना अलग चीज है, विचारना अलग चीज है। अब किस तरह का विचार किया जाए उसकी स्वतंत्रता आपको है। आप एक दर्जी के पास गए कपड़ा लेकर, वो कहा क्या बनाए, आपने जो कहा वो बना, आपने जो कहा वो दर्जी ने बनाया, आपने जो कहा पत्थर में से मूर्ति बनी, आप अपने लिए जो सोच रहे हो नेचर वही आपको बनाएगी। जब काल मार्क्स का आप लोग पढ़ते हो, परिस्थिति चेतना निर्माण करती है, तो एक कम्युनिस्ट लोग भी मानने लगे कि क्या है, वो लोग नेचर मानते हैं, लेकिन अब मान गए। थोड़ा उदाहरण दो, आपने यहां पर खाड़ा खोल कर, खाड़ा बनाकर गंदा पानी किया, तो वैज्ञानिक इसे अभी परमेश्वर नाम नहीं दे रहे हैं, बस जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो कहते हैं नहीं, इट मेक्स नो डिफरेंस, वो देखो नेचर आर ईश्वर, उस झगड़े में ना पड़ो। आपने गंदा पानी यहां इकट्ठा किया तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मच्छर आप नहीं बनाएंगे। ये परिस्थिति जो आपने गंदे पानी की बनाई तो थोड़े दिन नेचर मच्छर पैदा करेगी। आपने गुलाब का बगीचा बनाया तो सुगंध आप नहीं बनाएंगे, ये परिस्थिति आपने बनाई और सुगंध नेचर। अब यही देख लीजिए, काल मार्क्स वाली बात को जा देखिए, अब जब भगवान ने कहा यदा दाई धर्म से गलानी बहुत बात, पूरी वही परिस्थिति चेतना का निर्माण करती है। पहले मच्छर नहीं आता, पहले गंदा पानी बनाते, पहले सुगंध नहीं, पहले गुलाब का, पर ये आपके हाथ में है, आप सुगंध चाहते हो कि मच्छर चाहते हो, और पहले मच्छर आपको काटेगा फिर पड़ोसी को काटेगा, पहले सुगंध आपको आएगी फिर दूसरों को। अब यही है, यही पूरी बात, और नेचर की बात है, लेकिन पूरे वैज्ञानिक कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसी परिस्थिति बनाओगे नेचर उसी तरह से निर्माण करेगी, गंदा पानी तो मच्छर, गुलाब का बगीचा तो सुगंध, और मच्छर सुगंध आप नहीं बनाते, हम उसे परमेश्वर कहा। आप वैज्ञानिक हैं तो नेचर मानो, मैं कुछ आपसे नहीं कहता। आध्यात्मिक हैं तो आप परमेश्वर मानिए, लेकिन वो परिस्थिति हमने बनाई। ये जीवन की परिस्थिति का निर्माण आपके हाथ में है। अब यही है, आप क्या बनना चाहते हैं, अब वही विचार कर लो। शुरुआत उसकी विचार से है, फिर आगे निर्विचार है। तो प्रिय आत्मन, यहां जितने बैठे हो सब अस्तित्व हो, उसी अस्तित्व को वेदों ने कह दिया एकम सत विप्रा बहुधा बदम, जो अभी आपको दान दिया। आप सब अस्तित्व हैं, आकार का विनाश है, अस्तित्व का नहीं है। इस आकार का विनाश 100 साल में होगा लेकिन अस्तित्व का नहीं। कितने लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं जा विचार कीजिए, कोई बात आप समझ जाएंगे। आप 1 करोड़ के फ्लैट में सोए और मैं झोपड़ी में सोया, नींद में हम अस्तित्व में गए। जब अपने अस्तित्व में गए तो आप नहीं कह सकते कि मेरा फ्लैट 1 करोड़ का है, और मनीषानंद नहीं कह सकते कि झोपड़ी 10,000 की है। आप सो गए, अच्छा आप जागेंगे तो कहां, 1 करोड़ के फ्लैट में। मैं जब जागूंगा तो कुटीर में। स्वामी जी प्रारब्ध क्या है, सोने से पहले जो कुछ आपके पास है, सोने से पहले जो कुछ आपके पास है, 1 करोड़ का फ्लैट है, 5 गाड़ियां हैं, सुंदर पुत्र पुत्री हैं, धर्मपरायण आपकी पत्नी है, माताजी है। सोते समय बड़े प्यास से कहता है, इसको समझना, सोना यही मृत्यु माना गया, अस्तित्व वही है, लेकिन न वहां सुंदर पुत्र हैं, न पुत्री है, न धर्मपरायण पत्नी है, न माताजी है। लेकिन प्रियात्मन सोने से पहले जो कुछ छोड़ा था जगने पर मिलेगा, वही पत्नी मिलेगी, वही पुत्र मिलेगा, वही पुत्री मिलेगी, वही माँ मिलेगी, वही फ्लैट मिलेगा। और मैं झोपड़ी में से जब जागा तो शिष्य मिलेंगे, बेटियां मिलेंगी, 10,000 की झोपड़ी मिलेगी। ये जो 6 घंटे आप सोए, हाथ जोड़ के कहता हूं गलत न माना, ये 6 घंटे जो सोए इसी को मरण माना गया। ये सोना है मरण और जागना है जन्म। थोड़ा बहुत मुझे ज्योतिष का भी ध्यान है, लेकिन वैज्ञानिक मान गए कर्म सिद्धांत को। अब आप फ्लैट में जागे आज, तो कल फ्लैट में सोए तो आज जागे, और आज बेच दो, ये आपकी स्वतंत्रता है। अब यही बात जो 6 घंटे के बाद आप उठे, अब यही ले लीजिए 40 साल, 50 साल, 60 साल। आज 100 साल के बाद मैंने शरीर का त्याग किया, जहां भी मेरा जन्म होगा। एक दिन एक हमारे प्रिय आए, कहे स्वामी जी आप फकीर हो के 3 गाड़ी रखते हैं। अब मैंने कहा प्रारब्ध में जो छोड़कर आया हूं वो तो मुझे मिलेगा ही, वो तो मिलेगा, वो कहीं जाने वाला है, उसका उपयोग कैसे करूं मेरे ऊपर है। अब जा सोचिए, फ्लैट में आप जन्मे, क्यों जन्मे, क्योंकि पिछले जन्म में भी सोने से पहले वो फ्लैट में थे आप। लेकिन 40 साल कर्म न करोगे, यही जा कर्म सिद्धांत समझना है। आप 40 साल कर्म नहीं करेंगे तो फ्लैट बेचकर झोपड़ी में आ जाओगे, कर्म। और झोपड़ी में जन्म लेने वाला 40 साल के बाद कर्म करके फ्लैट में चला जाए। तो जो कुछ पिछले जन्म में कर्म किए वो तो मिलेगा, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आज क्या करना उसकी स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता नर नारी हमें आपको प्राप्त है, किसी दूसरे को नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो कुछ आपने किया है आपको मिलेगा, और जो कुछ आज कर रहे हो कल मिलेगा, लेकिन जो कुछ प्राप्त है उसको भोग क्यों नहीं पा रहे हो, हाय हाय क्यों कर रहे हो। जो भी आता है हाय महाराज जी, हाय हाय राम बोलेंगे, हरे राम नहीं बोलेंगे, जा सोचो तो सही। आप हाय इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपका भविष्य असुरक्षित नजर आ रहा है, कल लड़का कहना मानेंगे कि नहीं, मुझे रोटी देगा कि नहीं, ये फ्लैट रहेगा कि नहीं, ये धरती कंप में कुछ हो गया तो गुरु जी, धरती कंप हुआ ना कुछ, हाथ जोड़ के कहता हूं, तो कुछ मेरे शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी फ्लैट में सोने जाऊंगी नहीं। मैंने कहा जाओ, गुरुजी ने कहा तो अच्छी तरह सोए। तो दूसरे कहते भाई तुम्हारा गुरु अच्छा है तो बहुत अच्छा, तुम नींद आते। कहा गुरुजी कह दिया कुछ नहीं होगा, धरती कंप हुआ। कुछ अच्छे अच्छे लोग मेरे से पूछे, उसका एक ही उत्तर दे दूं फिर आप समझ जाएंगे धरती कंप क्या है कैसे है। पूरा विज्ञान सहमत हो गया। यहां पर थोड़ी सी रामायण की बात करूंगा। सीता नाम है आपकी सुंदर वस्तु, वो जमीन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, महल भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, सब कुछ। दूसरे की सुंदर वस्तु को, दूसरे की सुंदर वस्तु को जबरदस्ती अपना बनाने वाले को हमारे यहां राक्षस कहा गया। दूसरे की सुंदर वस्तु चाहे जमीन हो, दूसरे की सुंदर बस्ती को अन्याय पूर्वक जबरदस्ती अपना बनाने वाले को रावण कहा गया। और आज वैज्ञानिक यही विचार करते हैं कि रावण रावण की संपत्ति दोनों का विकास हुआ। जहां ये विचार आएगा वहां संपत्ति और व्यक्ति दोनों का विनाश होगा, संपत्ति का भी होगा और व्यक्ति का भी होगा होगा। अब दूसरी बातें मैं नहीं उठाना चाहता लेकिन विज्ञान मान गया कि बिल्कुल सही बात। अब लोग मेरे से पूछ रहे हैं, अब एक ने और पूछा बताऊं बड़े प्यार से, स्वामी जी धरती कम में मेरे बगल वाला मर गया मेरा क्या होगा। मैंने इतना ही कहा अगर जिंदगी में अन्याय किया है तो फ्लैट में सोने मत जा, और न्याय किया तो जा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन पूछा कहे स्वामी जी हिम्मत नहीं पड़ रही है, गरीबों का बहुत शोषण किया है मैंने। वो कंट्रैक्टर था, हाथ जोड़ के कहता मैंने कहा उन जल्दी से उन गरीबों का हिस्सा दे दे नहीं तेरा भी गिरने वाला ही होगा। किसके लिए, एक क्षण के सुख के लिए आपके कितना किसी को दुखी कर रहे हैं जबकि उसका भी कोई भरोसा नहीं है। भगवान बुद्ध की बात आती है, भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आके रोने लगा, कहा गुरुदेव तथागत बोलते तथागत, लगा दुनिया भर अशांत हूं यही हूं उसका ने लगा। उन्होंने कहा भाई ऐसा कर ये मेरा कपड़ा रख, तू तो अभी छोटी उम्र का है मैं तो बड़ी उम्र का हूं, मैं जब जाऊं दूसरे लोक में तो शायद वहां कपड़ा न मिले तो जब तू आना तो ये लेते आना। ये भगवान बुद्ध की कहानी। कहे रे महाराज जी क्या बात है, कहा एक आज के हिसाब से कहो कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा तो मरने के बाद नहीं ला सकता तो ये सब किसके लिए रो रहा है। अरे अपनी संतान को लायक बना, एक नहीं 10 धरती कम पाए जिसकी संतान लायक है फिर वो फ्लैट बना लेंगे, और संतान को निकम्मा बना के जो फ्लैट बनाए हैं आज रो रहे हैं। इसलिए मनोविज्ञान एक बड़ी सुंदर बात किया है, यहां सब संतान वाले बैठे हैं। मनोविज्ञान कहता है डोंट बिल्ड फ्यूचर फॉर योर चाइल्ड, डू बिल्ड द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर। हमारी बातों का ध्यान करके अब कहा जा रहा है और कहां से लिए मैं आपको बताता हूं। ये मनोविज्ञान की बात कहां से आई है जब आपको बताऊं, राम ने वशिष्ठ जी से कहा वशिष्ठ रामायण पढ़ो। राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव मेरा भविष्य कैसा निर्माण होगा बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा है वत्स मैंने राम का निर्माण किया है, राम के भविष्य का नहीं, और राम का इतना अच्छा निर्माण किया है या तो भविष्य बना लेगा या तो जैसा भविष्य होगा संभाल लेगा, और तेरा निर्माण नहीं होगा तो नया बना भी नहीं सकता और संभाल भी। यही मैं आपसे कहता अपनी संतान को इतना लायक बनाओ भले धरती कम पाए लेकिन नया फ्लैट बना दो, ये ना हो कि फ्लैट गया संतान भीख मांगे और हमें कोई पूछे नहीं। तो संतान के लिए भविष्य न बनाओ, संतान को भविष्य के लिए तैयार करो, इतना लायक बना दो कि अपना भविष्य स्वयं अब आजकल देखे हमारी बात को इस तरह कहा जाए, यही मैं पहले अपने को बनाओ। मैं तो आप लोगों से कहता हूं, बड़े हाथ से बड़े प्यार से कहता हूं, आप अपने आप को क्यों नहीं बना सकते? सारी रात जागोगे कोई चिंता में, अच्छा कल आप चिंता में जागे सिवाय आपके नींद नहीं आई, बाकी क्या गड़बड़ी हुई? सारा दिन आप कल चिंता में बिताए, क्या गड़बड़ी हुई सिवाय ये कि आप जो है परेशान रहे? और आज भी चिंता में बिताओगे तो कल क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। जब कल की चिंता से कुछ नहीं हुआ तो आज की चिंता से बस यही है। हमारे पास यहां सभी हैं, नाम लूंगा तो कभी भूल गया, सभी हैं जो मेरे संपर्क में है। यही पहले अपने को तैयार करो, और जो हैं तैयार काय को आप दूसरी तरफ आशा रखते, ठीक है? तो प्रिय आत्मन, आप एक अस्तित्व हैं, उसी अस्तित्व को विज्ञान प्रकृति की देन मानता है, हम परमेश्वर की देन मानते हैं। अगर प्रकृति में इतनी ताकत है तो आप में भी ताकत है। परमेश्वर को मानते हो इतनी ताकत तो आप में है, लेकिन चिंता में राग द्वेष में व्यस्त जा रही है, व्यस्त किसी काम की नहीं। अभी आपसे इतना ही कहूं, विचार कीजिएगा, फिर रात्रि में भी 8:30 बजे करूंगा तो आगे और बताऊं। अभी क्या बता रहा हूं कि जो कुछ किया है वही मिल रहा है, और जो आज करोगे कल मिलेगा, और आज की स्वतंत्रता आपके हाथ में है, तो आज आनंद से जी लो, अपना कर्म अच्छी तरह कर लो। प्रार्थना करने से संध्या, जो प्रार्थना करते हो, अब विज्ञान आ गया कि संध्या का दीपक जलाने से, प्रार्थना करने से सूरज नहीं निकलेगा। आप प्रार्थना करो या न करो सूरज निकलेगा, लेकिन 8-9 घंटे की रात शांति से बीते, इसलिए शाम को आरती करते हो, दीपक जलाते हो। तो प्रिय आत्मन, कल अपने आप आएगा, उसकी चिंता न करो, लेकिन आज का जीवन, आज का कर्म, आज का विचार, आज का अस्तित्व, उसका स्मरण करो। यही रामायण में भी आया, जब हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र का कैसे पार जाऊंगा, तो उनको स्मरण दिला गया, बाल समय रवि भक्त लियो, वही स्मरण मैं आपको दिला रहा हूं। आप हो कौन? जो कुछ किया है वही मिला है, जो कुछ करोगे वही मिलेगा। तो आज अभी इतना ही कहता हूं, इसके आगे अभी ध्यान की बहुत बात है, रात में बताऊंगा, कल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आनंद में आ जाओ, आनंद आपका अस्तित्व है, और इस अस्तित्व से दूर जा रहे हो इसलिए दुखी हो रहे हो। आप कहते हो कि हे आनंद, जो मैं करूं उसमें आनंद आए, हे ईश्वर, जो कुछ मैं करूं उसमें तुम मदद करो, लेकिन मैं आपसे कहता हे ईश्वर, जो आप मेरे से अच्छा काम लेना चाहो लो, मुझे तो मालूम नहीं होता क्या अच्छा। आइए आज एक समर्पण भाव लाएं, हे ईश्वर हमसे अच्छा काम लो, हे ईश्वर आपके समीप में आओ, हे परमेश्वर मेरी कुछ भी कामना हो, मेरी कुछ भी इच्छा हो, लेकिन आप ठीक समझो तो पूर्ति करो, नहीं तो नहीं। हमारे मन में कितनी इच्छाएं होंगी, बहुत कुछ होंगी। हमारे मन में तो ये भी है, आम लोगों में, अभी थोड़ी दिन पहले एक वैज्ञानिक आया मेरे पास, उसने एक बात कही, अभी बता दूं या याद आया, कहा स्वामी जितना श्रम करता हूं इतना करता हूं, लेकिन जो जस मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। मैंने कहा तू अगर बड़ा पेड़ बनना चाहता है आम का, और लोग तेरे नीचे छाया में बैठे खाएं, तो वो 6 महीने में नहीं बनेगा। ये पेड़ का भी कुछ समय है बनने का, तो बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा बनने का प्रयास करो, लेकिन इतनी जल्दी 6 महीने में केरी आम लगने वाला नहीं है। हर चीज का समय है, और हमारा आपका चले ना तो 100 साल वाली बात 40 साल में पूरी कर दे, 60 साल क्या करोगे? 100 साल वाली बात 40 साल में कर दे, फिर करोगे क्या? और विज्ञान कहता है हमारी उम्र 100 साल की, इसलिए ग्रोथ धीरे धीरे होगी, और जो पेड़ जितना ऊंचा जाएगा उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, और जो जितनी जल्दी ग्रोथ में आएगा उसका विनाश भी उतनी जल्दी। इसलिए ईश्वर का न्याय समझो। ईश्वर कहता है तू जो बगीचा लगाया उसमें फल आएगा, प्रार्थना इसलिए कर कि बगीचा बिगड़े नहीं, लेकिन तेरी प्रार्थना से 6 महीने में आम लगने वाला। और हम यही कहते हैं हे भगवान रोज 11 माह